उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26 पद से लेकर के 28 पद तक। उत्पत्ति सबसे पहली पुस्तक है बाइबल में। यहां पे परमेश्वर के वचन में हमको बताया गया इस संसार की सृष्टि कैसे हुई है। परमेश्वर ने खाली बोला, केवल मुंह से बोला, उन्होंने शब्दों को बोला, उन्होंने वचन बोला और सृष्टि हुई। बाइबल का परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। जब बाइबल सृष्टि की बात करती है तो सृष्टि और मनुष्यों की सृष्टि ये कई देवी देवताओं, कई ईश्वरों की उपज नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि अलग अलग मिथोलॉजी, अलग अलग मिथ्याओं में, अलग अलग, चाहे हिंदुस्तान में, भारत में हो, चाहे यूरोप में हो, यूनानी हो, चाहे रोमी हो, चाहे यूरोपियन हो, अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कारों में, अलग अलग सभ्यताओं में आरंभ से लोग अलग अलग तरह से आकलन लगाते हैं कि परमेश्वर ने कौन है, ईश्वर कौन है, इस संसार की सृष्टि कैसे हुई है। तो जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, अलग अलग समाज के, अलग अलग सभ्यताओं के धर्म और धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, तो अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि कई ईश्वरों ने मिल करके या तो हमसे काम करवाने के लिए मनुष्यों को बनाया, या आपस में लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करने की वजह से उनके शरीर के टुकड़े गिर गए, इधर उधर पड़ गए और उनमें से मनुष्य बन गए, सृष्टि हो गई। अलग विचित्र तरह की सृष्टि का वर्णन किया गया। लेकिन जब हम बाइबल में आते हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया, और परमेश्वर ने कुछ नहीं से सब कुछ को बनाया क्योंकि वो बना सकता है। उसने संसार की सृष्टि की आरंभ में, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में, और जब उसने पेड़ पौधे जानवरों की सृष्टि कर ली, चांद तारे सूरज ये सब बना लिया उसने, उसके बाद आखिर में उसने मनुष्य की सृष्टि की। पहला अध्याय उसका 26 पद, आरंभ में ही प्रभु ने क्या कहा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएंगे, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश की पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करें। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा, उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों, आकाशीय पक्षियों और पृथ्वी और चलने फिरने सब प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, यहां पे परमेश्वर ने सृष्टि की, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, नर और नारी करके बनाया। लेकिन एक मुख्य बात को ध्यान रखिए, यहां पे हम जो मनुष्य हैं हम अपने आप पैदा नहीं हो गए, हमको प्रभु जी ने बनाया है, पहली बात, मुख्य बात। दूसरी बात, एक जो बड़ी मुख्य बात है जिस बात को हम आगे चलकर देखेंगे, हमारे विषय संबंध है, वो ये है कि प्रभु जी ने हमको अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया, अपने जैसा। तो उसके स्वरूप में बनाए जाने का मतलब क्यों, अंग्रेजी में इमेज शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके इमेज में बनाया, उसके जैसे, उसके चित्र के अनुसार बनाने का मतलब क्या हुआ। मतलब यह हुआ प्रभु जी ने हमको कुछ काम दिया है, कुछ कार्य दिया, कुछ जिम्मेदारी दिया। क्या जिम्मेदारी, प्रभु जी ने हमसे कहा है कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और अधिकार रखो, तो साम्राज्य करने के लिए, राज्य करने के लिए। तो प्रभु जी ने हमें राज्य करने के लिए इस पृथ्वी की सृष्टि के ऊपर जो कुछ भी प्रभु ने बनाया, हमें और अधिक प्रजनन करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, और ये सब करने के द्वारा सबसे बढ़कर प्रभु जी के स्वरूप में बनाए जाने का मतलब है कि हमको प्रभु जी का प्रतिनिधित्व करना है, हमको प्रभु जी के जैसे होना है। उसने हमको अपने जैसा बनाया, उसके जैसे होना है। मूर्तियां क्या होती हैं, मूर्तियां जो होती हैं, अगर आप, जब हमारे देश में जब नेता लोग आते हैं, अलग अलग सरकारें आती हैं, जब नई नई सरकारें आती हैं, तो अक्सर क्या करते हैं, सरकारें कई शहरों में मूर्तियां लगाती हैं, मूर्तियों की स्थापना करते हैं। कुछ सालों पहले उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी की सरकार थी, तो मायावती जी क्या क्या जगह 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 अपनी मूर्तियां लगा दी, अपनी मूर्तियां, अंबेडकर की मूर्तियां, कहीं भी जहां जाए वहां मूर्तियां, जहां जाए वहां मूर्ति। अंबेडकर पार्क में जाएंगे तो उनकी बड़ी मूर्ति, चार दिशा में देखते हो, 40 फीट ऊंची मूर्ति मायावती जी की, इधर देखो तो मायावती, उधर देखो तो मायावती, इधर देखो तो मायावती, हर दिशा में क्या है, क्या मूर्तियां, क्या दिखा क्या, ये उनका प्रतिनिधित्व करें, एक दिखाने के लिए कि हम यहां पे हैं, हमारी उपस्थिति है। जिस समय उत्पत्ति की पुस्तक लिखी जा रही है, उस समय के सभ्यता के अनुसार, प्राचीन मध्य पूर्व, निकट पूर्व के समाज में, उस जगह के लोगों में ये मान्यता थी कि परमेश्वर का प्रतिनिधित्व संसार में राजा लोग कर रहे हैं। जो राजा लोग हैं वो परमेश्वर की जगह में हैं। और फिर राजा लोग क्या करते थे, अपने राज में अलग अलग जगह अपनी मूर्तियां स्थापित कर देते थे, अपनी मूर्तियां। तो भले ही वो नहीं है तो वो बैठे दिल्ली में है, लेकिन राजा की मूर्ति लखनऊ में भी है और कलकत्ता में भी है और बैंगलोर में भी है, अलग अलग जगह है। तो कहने का मतलब, यद्यपि राजा जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसकी उपस्थिति सब जगह है। तो दूसरे शब्दों में दूसरे हो क्या रहा है यहां पर, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो मनुष्य को, आदम और हव्वा को, और फिर उसके बाद उत्पन्न होने वाले संतानों को परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना था इस संसार में। जो मनुष्य था, मनुष्य को परमेश्वर के जैसे होकर के परमेश्वर के बदले में इस संसार पे राज्य करना था। प्रभु जी ने मनुष्य को बनाया, अदन की वाटिका में रखा और कहा यह अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम मेरे बदले में ये काम करो। परमेश्वर ने मूर्तियां नहीं रखी, परमेश्वर को मूर्तियां रखने की जरूरत नहीं थी। जब लोगों को देखेंगे तो लोगों को देखने के द्वारा लोग क्या दिखाई देगा, परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर की समानता दिखाई दी गई, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व, परमेश्वर का स्वरूप मनुष्यों में दिखाई देना चाहिए था। यह परमेश्वर की योजना थी। इसीलिए प्रभु ने कहा फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, खाली अदन की वाटिका में सीमित नहीं रहो, मेरा राज संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाएगा। तो ढेर सारे आदम होंगे और ढेर सारे हव्वा होंगे, और ये सारे हव्वा और आदम जिनको मैंने अपनी समानतम बनाया, अपने जैसे बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, वे मेरी मूर्तियों के समान होंगे, वे मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे, वे मेरे स्थान पे राज करेंगे, और वह मेरे स्थान पे संपूर्ण पृथ्वी पे दिखाएंगे कि मैं कौन हूं। मूर्तियां क्या करती है, दिखाते हैं कि भगवान जी दिखने में कैसे होंगे, इसलिए तो लोग भगवान जी के जैसे होंगे। परमेश्वर ने जानबूझ के, जानते फिरते हुए, जानते समझते हुए, जानबूझ करके एक सीमित वस्तु के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व नहीं करवाया था, लेकिन जीवित, मृतक चीजों के द्वारा नहीं, लेकिन जीवित व्यक्तियों के द्वारा। परमेश्वर महान है, हम बता चुके हैं आपको बार बार, कई बार ये बता चुके हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को। परमेश्वर असीमित है, असीमित है ना, बहुत बड़ा है। प्रभु जी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, बहुत महान है। वो इतने बड़े हैं कि हम उनको किसी छोटी सी चीज में सीमित नहीं कर सकते हैं। हम कोई छोटा सा चित्र, कोई छोटी सी मूर्ति रख नहीं सकते और ये नहीं कह सकते ये देखो प्रभु जी ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु जी का गुण अत्यंत महान है, बड़े हैं, वैभवशाली हैं। कैसे करके कोई छोटी सी सीमित चीज उनके गुणों को, उनके संपूर्ण गुणों का सही तरीके से प्रतिनिधित्व कर पाएगी? कोई मूर्ति अगर उनका प्रतिनिधित्व करेगी तो शक्ति का, कोई प्रतिनिधित्व करेगी उनकी दया का, कोई मूर्ति प्रतिनिधित्व करेगी उनकी धार्मिकता का, लेकिन परमेश्वर के गुण असीमित हैं। कोई भी एक चीज संपूर्णता से परमेश्वर के चरित्र को नहीं प्रतिनिधित्व कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, हल्के से, थोड़े से अंदाज में, किसी तरह से अपने आप को लोगों के सामने प्रतिनिधित्व करने के लिए। अच्छा, एक बात इससे पहले हम आगे बढ़े, हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं। हमारे समाज में लोग ये सोचते हैं कि कण कण में भगवान, कण कण में भगवान, और हमारे अंदर भगवान है, हम भगवान है। हमें अपने आप को झांकना है और ढूंढना है और पहचानना है। जब हम अपने आप में अंदर झांकेंगे, पहचानेंगे, तो हम पाएंगे कि आखिर हम खुद भी भगवान है, हम भी भगवान का हिस्सा है। ठीक है, हम भगवान का हिस्सा, एक दिन हम भगवान में जा मिले, भगवान से मतलब उनका ईश्वर, अनंत ईश्वर से है। ये बात यहां पर नहीं हो रही उत्पत्ति में, ये फर्क शिक्षा है। उत्पत्ति हमको जब कहता है कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, तो यहां पे यह मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर हैं। बाइबल इस बात को बार बार साफ साफ बताती है कि परमेश्वर में और मनुष्यों में फर्क है, भिन्नता है। परमेश्वर सृष्टि करता है और मनुष्य सृष्टि है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है उसके जैसा, उसके जैसे दिखने के लिए, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, लेकिन मनुष्य मनुष्य, परमेश्वर परमेश्वर है, और मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं बनेगा। हम उसमें, हमारा मिलन उसमें नहीं होगा, हम उसका अंग नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हमको धीरे धीरे अपने जैसा और बनाएगा। उसके बारे में आगे चल के देखेंगे। ठीक है, फर्क समझिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मतलब क्या हुआ कि हम परमेश्वर के जैसे हैं, हमें उसका प्रतिनिधित्व करना, उसका समानता होना है। कुछ तीन क्षेत्र हैं, तीन मुख्य बातें हैं जिनके बारे में बाइबल के विद्वान, बाइबल के शिक्षक लोग कहते हैं, जिसको हम जल्दी से देखेंगे। पहली बात, हम परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में बनाए गए, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए। परमेश्वर के हम छोटी छोटी मूर्तियां इस संसार में है, एक मायने में उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या करने, सबसे पहली बात उसके चरित्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए। हमें अपने चरित्र, अपने व्यवहार में दिखाना परमेश्वर के जैसे बनना है। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पहले बनाया, उसकी पवित्रता को दर्शाने के लिए, उसके न्याय को दर्शाने के लिए, उसकी करुणा को, उसकी धार्मिकता को दर्शाने के लिए, ना सिर्फ चरित्र को दर्शाने के लिए लेकिन उसकी क्रियात्मक क्रिया को, उसके रचनात्मक क्रिया को, उसके बनाने के गुण को। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आरंभ से वो बनाने वाला परमेश्वर। तो उसने जब मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया, तो उसने हमको बनाने का काम दिया, करने का काम दिया। आदम की वाटिका में काम करने के लिए रखा आदम और हव्वा को। खाली बैठ करके सोफे में बैठ के दिन भर टीवी देखने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने आदम और हव्वा को, नहीं, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को खेत में काम करने के लिए बनाया, मेहनत करने के लिए। मेहनत करो, काम करो, चीजों को उगाओ, नया करो, नई चीज बनाओ, नई चीज जानो, केवल आलसी मत बनो। तो आदम और हव्वा को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था। तो जब मनुष्य लोग आलस करते हैं तो वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं करते हैं। काम खराब चीज नहीं, परमेश्वर ने काम बनाया ही इसीलिए ताकि मनुष्य के लिए मनुष्य करे, और परमेश्वर ने हव्वा की सृष्टि की ताकि हव्वा को आदम के साथ मिल करके आदम की वाटिका में काम करें, तो काम करने के लिए, ठीक है, क्रियात्मक। तीसरी चीज, संबंधों को दर्शाने के लिए, हम कैसे परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करते हैं, हम कैसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। तीन मुख्य क्षेत्र में, उसके चरित्र को दर्शाने के लिए, उसके क्रियात्मक क्रिया को, रचनात्मक क्रिया को दिखाने के लिए, और संबंधों को दर्शाने के लिए। तो हमारे पास, हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने क्षमता दी है एक दूसरे से संबंध रखने के लिए, मित्रता के लिए। बाइबल का परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, अनंत काल पूर्व से अनंत काल तक ही, हमेशा तक पिता पुत्र पवित्र आत्मा सिद्ध संबंध में है, प्रेम में, सिद्ध प्रेम के संबंध में, मित्रता में एक दूसरे के साथ है। अनंत काल पूर्व, यीशु मसीह की शुरुआत 2000 साल पहले नहीं हुई, यीशु मसीह अनंत काल से है, ठीक है। पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन नहीं शुरू हुआ, पवित्र आत्मा अनंत काल से है। यीशु मसीह देह में 2000 साल पहले आ गए, पवित्र आत्मा कलीसिया को पूरी तरह से एक नए तरीके से सामर्थ के साथ पेंतेकोस्त के दिन दे दिया गया हमारी सहायता करने के लिए, हमको अंत तक ही बनाए रखने के लिए। लेकिन परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अनंत काल से एक सिद्ध मित्रता, सिद्ध प्रेम में, सिद्ध संबंध में हमेशा से पाया जाता है। परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम करता है आपस में, खुद में प्रेम करता है, स्वयं में वो प्रेम है, और उसी के प्रेम को हमको दर्शाना है समाज में, एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के साथ। लेकिन हुआ क्या, अगर आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो पाप आए। जब पाप आए तो क्या हुआ, जब पाप आए, जो मनुष्य की जो क्षमता थी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसके चरित्र में, उसकी रचनात्मक क्रिया में और संबंधों में, ये तीनों चीजों में नुकसान पहुंचा, बाधा पहुंची। और मनुष्य की क्षमता परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसका स्वरूप होने के लिए, उसकी समानता में होने के लिए, उसकी मूर्ति बन करके स्थान में, दुनिया में रह करके उसका सही प्रतिनिधित्व करने में गड़बड़ हो गया, उसमें खराबी आ गई, उसमें पाप आ गया, और वो स्वरूप जो मनुष्य के अंदर पाया जाता था कुछ हद तक बिगड़ गया। खत्म नहीं हो गया लेकिन बिगड़ गया। जैसे मान लीजिए आप किसी ब्लैक बोर्ड पे चौक लेते हैं और फिर उससे आपने कोई चित्रकारी बनाई है, और फिर बाद में कोई छोटा बच्चा आता है हाथ से लेकर के वो चित्र पे फेर देता है, तो अभी भी चित्र है वहां पे, लेकिन अब वो जो है दिखने में साफ नहीं है। उसी तरह से पाप आने के बाद अभी भी परमेश्वर का स्वरूप मनुष्य जाति में है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, परमेश्वर की समानता नहीं है, क्षमता नहीं है प्रभु की, जैसे जो चीजें प्रभु ने कही थी पहले प्रथम में देने के लिए वो नहीं पाई जाती है, लेकिन उसमें गड़बड़ी हो गई है, बिगाड़ हो गया, ये समस्या हो गई। तो हुआ क्या, हमारा चरित्र खराब हो गया। अगर आप उत्पत्ति उसका छठा अध्याय उसका पांचवा पद वहां पर देखेंगे, बाइबल हमको बताती है शुरुआत में ही आदम और हव्वा के बाद उसकी संतानें हुई हैं, और वहां परमेश्वर ने महा एक जल प्रलय भेजने वाले हैं। लेकिन उससे पहले छठे अध्याय उसके पांचवें पद में लिखा है, तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है, और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है, बुरा ही होता है। आठवां अध्याय उसका 21 पद, महाप्रलय के बाद, और फिर यहां 21 में बड़ी बाढ़ आने के बाद फिर परमेश्वर ने क्या कहा, फिर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर अपने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप ना दूंगा, यद्यपि बचपन से मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। समस्या क्या है मनुष्य की, बचपन से जो कुछ भी, आरंभ से मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। तो देखने क्या हुआ, पाप आ गया, पाप आने के कारण परमेश्वर की जो समानता, जो स्वरूप था वो बिगड़ गया। सृष्टि के बाद मनुष्य का हृदय खराब हो गया और हमारा चरित्र जो है गड़बड़ा गया, हमारे काम करने की क्षमता गड़बड़ा गई। जब पाप आया तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को श्राप दिया, और उत्पत्ति उसके तीसरा अध्याय उसके 17 और 19 पद में 17-19 में परमेश्वर वहां पे श्राप देते हैं और आदम से कहते हैं क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस वृक्ष का फल खाया जिसके लिए मैंने आज्ञा देकर कहा था कि तुझे ना खाना, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। ये पाप आने के बाद की बात आई है। तो तू उसकी उपज जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ खाया करेगा, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत का साग पात ही खाया करेगा। तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया, तू मिट्टी तो है, अतः मिट्टी में फिर मिल जाएगा। तो जब पाप आ गया तो हमारा चरित्र खराब हो गया, हमारे हृदय की हर एक मनसा खराब हो गई, हमारी रचनात्मक क्रिया में गड़बड़ी आ गई, क्योंकि प्रभु जी ने दंड दिया, श्राप दिया कि मेहनत करोगे लेकिन मेहनत में बड़ा ही दर्द होगा, खून पसीना होगा, ईंट कटारे होंगे तुम्हारे मेहनत में, चाहे केवल खेती की बात नहीं हो रही, चाहे आप ऑफिस में काम करें एसी में बैठ के काम करें, चाहे आप बाहर खेती किसानी करें, मेहनत दोनों में है, अलग अलग तरह का मेहनत है। ना सिर्फ ये लेकिन हमारे संबंधी खराब हो गए पाप आने की वजह से। तीसरा अध्याय उसके 8वें पद में, जब परमेश्वर वहां पे अदन की वाटिका में आया, तीसरा अध्याय उसके 8वें पद में, फिर उन्हें दिन के ठंडे समय में वाटिका में यहोवा परमेश्वर की चलने का शब्द सुनाई दिया और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में छिप गए। पहले उनका संबंध परमेश्वर के साथ सिद्ध था, ठीक था, पाप आने की वजह से आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर हट गए। ना सिर्फ परमेश्वर संबंध खराब हो गया लेकिन तीसरा अध्याय उसके 16 पद में परमेश्वर ने उनको श्राप दिया और पति और पत्नी के बीच के संबंध में भी गड़बड़ी आ गई। तो तीसरा अध्याय उसके 16 पद के आखिरी खंड में लिखा है, फिर भी तेरी लालसा तेरे पति के लिए होगी, वो तुझ पे प्रभुता करेगा। यहां पे जब लालसा की बात करें, यहां पे ये लालसा की नहीं बात करें, अरे मेरा पति, मैं कितना प्यार करती हूं उससे, यहां पे लालसा की बात हो रही, मैं अपने पति को कैसे नियंत्रण में रख कर सकती हूं, कैसे मैं उसको अपने चंगुल में रख सकती हूं, कैसे वो मेरी बात सुनेगा कैसे नहीं, ये उस लाल इसका यहां पे इसका ये मतलब है, नियंत्रण करने का मतलब। वो पत्नी नियंत्रण करने का प्रयास करेगी अपने पति को और पति जो है अपने पति के ऊपर प्रभुता करेगा, अगुवाई नहीं करेगा लेकिन दबाने की कोशिश करेगा। तो दोनों में ये ठनाठनी रहेगी, ये संबंध में खराबी आ गई पाप की वजह से। ना सिर्फ परमेश्वर और लोगों में, ना सिर्फ पति पत्नी में, लेकिन हम आगे चल के चौथे अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे आपको मालूम है उत्पत्ति कहानी क्या हुआ, कैन और हाबिल के बीच में क्या हुआ, भाई भाई में लड़ाई हुई। तो क्या क्या, कैन ने हाबिल को जान से मार दिया। क्या क्या पाप ने किया, क्या आप देख रहे कि नहीं देख रहे, परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया था, उसको स्वरूप होने के लिए, उसकी समानता बनाया था, उसके जैसे बनाया था, क्या करने के लिए, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसके बदले में उसके जैसे। तो लोग देखे मनुष्य को इस संसार में, ओ परमेश्वर दिखने में इनके जैसे प्रेमी है, इनके जैसे करुणामयी है, इनके जैसे क्रियात्मक है, रचनात्मक है, इनके जैसे संबंध वाला परमेश्वर है। लेकिन पाप के बाद ये सारी बातें खो गई हैं, क्योंकि पाप आया तो परमेश्वर ने आखिर में क्या किया, प्रति उसके तीसरे अध्याय 24 पद में आता है, उसने आदम को बाहर निकाल दिया। पहले परमेश्वर ने बनाया था कि उसके साथ रहेगा लेकिन परमेश्वर ने उसको बाहर निकाल दिया और जीवन के वृक्ष की मां की रक्षा करने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। अब परमेश्वर से संबंध नहीं रहा, परमेश्वर ने मनुष्य को बाहर निकाल दिया। अगर आप प्रकाशित वाक्य चौथे अध्याय में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य से चौथे अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, परमेश्वर ने संपूर्ण सब चीजों की सृष्टि की, सब चीजों की सृष्टि। जो कल रात में अपने बेटे के साथ, दूसरे बेटे के साथ बैठ के बात कर रहा था, तो मुझसे हम उसको समझाए थे, प्रभु ने सब कुछ की सृष्टि की, तो हर चीज में डैडी ट्रीज यस, लीव्स यस, वाटर यस, मेरा बेटा हर चीज पूछता रहा, उसके दिमाग में, उसका छोटा दिमाग जितनी चीजें उसकी याद आती आ रही है, चिड़िया हाँ बेटा, जानवर हाँ, पेड़ हाँ, पेड़ की पत्तियां हाँ, हाँ हाँ हाँ, तो जो बोलता रहा, मैं कहता हाँ, सब कुछ प्रभु ने बनाया है, जो कुछ तुम देखते हो इस संसार में, जो कुछ भी है ये सब कुछ परमेश्वर की सृष्टि है, अपने आप नहीं आ गया है, ये प्रभु जी ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है और प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी है। अब जो वस्तुओं का हम निर्माण देखते बनाने के लिए, परमेश्वर के सृष्टि के बिना मनुष्य नहीं बना सकते। क्या मनुष्य मकान बनाने के लिए और पुल बनाने के लिए और इंजन बनाने के लिए लोहा कहां से लेके आया, मनुष्य मिट्टी कहां से लेकर के आया, कहां से लेके ये सारी धातु और पदार्थ, ये सब परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं को हम उपयोग करते हैं और फिर उसके बाद से, क्योंकि वो सृष्टि करता है और उसके जैसे कुछ गुण हमें पाए जाते हैं, हम भी रचनात्मक क्रियात्मक काम करते हैं। तो ये स्थिति हुई उत्पत्ति में आकर के, प्रकाशित वाक में परमेश्वर को साफ साफ बताता है कि उसने हमको बनाया किस लिए, उसकी आराधना करने के लिए। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने परमेश्वर की आराधना नहीं की। मनुष्य अपने आप को परमेश्वर का प्रतिनिधित्व बन के रहना उसको ठीक नहीं लगा। वो कह रहा मैं क्यों बनूं उसकी मूर्ति, मैं क्यों उसका प्रतिनिधित्व करूं, मैं खुद प्रभु बनूंगा। उसने अपनी नियति को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। उसने कहा मुझे मालूम मेरा गंतव्य कहां है, मुझे मालूम मेरा अंत कहां है। मनुष्य ने पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया, विद्रोह किया। हमारे आदि माता पिता ने, हमारे पहले माता पिता ने, आपके 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 बाबा जी थे वो, आपके आपके परदादा थे वो। आप नकार नहीं सकते, हम सब के परदादा थे, हम सब के आदम और हवा हमारे परदादा जी ने, पर के परदादा जी ने पाप किया और विद्रोह किया और उनको पापों की सजा भुगतनी पड़ी, बाहर निकाल दिए गए। लेकिन प्रभु जी ने मनुष्य को छोड़ नहीं दिया, परमेश्वर ने मनुष्य छोड़ दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को अगर वो चाहते तो उसी समय सृष्टि का नाश कर दे संपूर्णता से, जिसका हमने एक छोटा सा हिस्सा देखा जब नूह की बाढ़ आई। नूह की जब बाढ़ आई तो परमेश्वर ने एक थोड़ी सा परमेश्वर ने अपने प्रकोप को दिखाया कैसे मनुष्य के ऊपर पड़ना चाहिए, लेकिन प्रभु ने फिर भी दया की और संसार को बचा के रखा। प्रभु उस समय से एक योजना बना रहे हैं कि एक दिन मैं इन लोगों को वापस लेकर गया। उत्पत्ति से तीसरे अध्याय उसके 15 पद में ही जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे एक झलक पाई जाती है कैसे प्रभु जी पुनः लोगों को अपनी समानता में बनाएंगे। एक दिन कोई आएगा जो सर्प के सर को कुचलेगा और वो सर्प उसके एड़ी को डसेगा, लेकिन वो जो होगा, जो स्त्री का जो वंश होगा, वो एक नई आशा लेकर के आएगा और परमेश्वर पुनः लोगों को अपनी समानता बनाएगा। फिर उसके बाद हम आए निर्गमन उसके 20वां अध्याय में। अगर आपको कहानी मालूम है पुराने नियम की, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके बाद अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि एक व्यक्ति को चुना और कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा संपूर्ण जातियों को आशीष दूंगा। और फिर उसके बाद इब्राहिम के वंशज से इज़राइल आया, उसी के बाद से उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों से, और फिर वो लोग बंधुवाई में चले गए और वे लोग गुलामी में चले गए, मिस्र देश की गुलामी में। और फिर परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से इसराइलियों को बाहर लेकर के आया। परमेश्वर ने जो आदम को लेकर के आए थे, आदम को उसकी संतानों को नहीं त्यागा, इब्राहिम की संतानों को नहीं त्यागा, और इसराइल के लोगों को बंधुवाई से निकाल करके निर्गमन उसके 20वें अध्याय में उसके पहले दूसरे तीसरे पद में हमारे से देखे परमेश्वर कुछ साफ निर्देश देता। प्रभु जी ने क्या निर्देश दिया, प्रभु जी ने कहा निर्गमन उसका 20वां अध्याय उसके पहले पद से आगे देखिए, निर्गमन उसका 20वां अध्याय पहले पद से, तब परमेश्वर ने ये वचन कहे। क्या कहा प्रभु जी ने, प्रभु जी 10 आज्ञाएं दे रहे हैं लोगों को। प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे मिस्र देश अर्थात दासत्व के घर से निकाल करके लेकर के आया, मैं ही परमेश्वर हूं। फिर तीसरे पद में ये जो 10 आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के जो नियम है, पुराने नियम में जो व्यवस्था है उनका सारांश है, उनका सारांश है। तो 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा प्रभु जी क्या कहते हैं, तीसरे पद में प्रभु जी पहली आज्ञा कहते हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। पहली बार प्रभु जी ने पहले क्या कहा, मैं तुमको लेकर के आया हूं, मैंने तुम्हारी सृष्टि की है, और फिर मैं तुमको मिस्र देश से छुड़ा करके लाया हूं, मैं ही तुम्हारा, कोई और तुमको नहीं छुड़ा, कौन छुड़ा सकता था तुमको मिस्र देश से, बताओ। तुम तो छोटे मोटे लोग हो, तुम्हारे पास ताकत भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई सेना नहीं है। तुम्हारा अगुआ मूसा वो तो बोलना भी नहीं जानता था, वो तो हकलाता था, उसके पास क्या क्षमता थी, वो तो डरपोक था, वो तो भाग गया था, लेकिन मैं छुड़ा करके लेकर के आया तुमको, इसलिए तुम क्या करोगे। अब तुम जानते हो मैंने क्या किया तुम्हारे, मैं हूं सो हूं, मैं परमेश्वर हूं, मेरा नाम क्या है, मैं हूं जो मैं हमेशा से था, हूं, रहूंगा, इसलिए तुम किसी और को ईश्वर नहीं मानोगे। तीसरी चौथी बात चौथे पद में उसी आज्ञा को बात करते हुए दूसरी आज्ञा दूसरे नाम क्या है, इसलिए तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर ना बनाना। आरंभ ही परमेश्वर ने साफ से कह दिया, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर ना बनाना, ना अथवा ना किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में, ना तो उनकी तुम दंडवत करना ना उनकी उपासना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, जो मुझसे बैर करते हैं उनकी संतान को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक बाप दादों से की दुष्टता का दंड देता हूं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मेरी आज्ञा पालन करते हैं उन हजारों हजार पर करुणा करता हूं। तो क्या कर रहे हैं परमेश्वर यहां पर, क्या कह रहे हैं, तुम किसी की मूर्ति ना बना, क्यों नहीं बनाना, किसकी मूर्ति बना, अगर तुम बनाओगे मूर्ति तो किस चीज की बनाओगे, तुमको कल किस चीज बनाओगे, या तो कोई चीज उड़ती है, या तो कोई चीज रेंगती है, या तो कोई चीज चलती है, या तो कोई चीज है जो उगी है, या तो कोई चीज है जो आकाश में दिखाई देती है, इसी चीज की तुम मूर्ति बनाओगे, और किसी चीज की मूर्ति बनाओगे, कितनी बुद्धि है तुम्हारे पास, यही तो तुम करोगे, चाहे वो उड़ती है, चाहे वो रेंगती है, चाहे वो चलती है, चाहे वो उगती है, चाहे वो आकाश में लटकती है, वो सब मैंने ही बनाया है भाई, मैंने बनाया है। जब मैंने बनाया है और ये चीजें मेरे हाथ की बनाई हुई, ये चीजें तुमको लेकर के नहीं आई हैं, बल्कि ये चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे भले के लिए। तो तुम उनके सामने मत दंडवत करो, मेरे सामने दंडवत करो, मेरे सामने। लेकिन मेरे सामने दंडवत करने के लिए तुम कहां से लाओगे मेरा चित्र? तुम मेरा चित्र बनाओगे? तुम्हें अगर तुम्हें परमेश्वर के चित्र बनाना, तुमको कल मैं अपने बेटे से बात करता हूं, हाउ बिग इज गॉड? परमेश्वर कितना बड़ा है? वेरी बिग, बहुत बड़ा है। हाउ बिग? वेरी बिग, बहुत बड़ा। दिस बिग? नो, इससे भी बड़ा। इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा, और बड़ा। और उसका हाथ पीछे होता है, हाँ मच बिगर, इतना बड़ा। आप परमेश्वर का चित्र बनाओगे तो कितना बड़ा चित्र बनाओगे भाई? कहां कहां तक बनाओगे चित्र? कैसे बनाओगे? उसका प्रतिनिधित्व कैसे करोगे? वो अत्यंत है, अत्यंत महान है, उसका चित्र नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए प्रभु जी ने कहा, और कोई बात नहीं है, प्रभु कोई ऐसा नहीं, प्रभु जी चित्रकारी के विरोध में नहीं है, प्रभु जी चित्रकारी अच्छी है, मसीहत में चित्रकारी मना नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम चित्रकार बनाओगे, अगर किसी आदमी का चित्र बना दिया तो आदमी बेजान हो जाएगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आदमी का चित्र बनाओ, जानवर चित्र बनाओ, कोई लोगों का चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना करके उसकी उपासना करना समस्या है। क्यों? क्योंकि जिस क्षण तुम कर रहे हो, तुम उस क्षण कह रहे हो ये परमेश्वर है, लेकिन ये परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो है जिसने संसार को बनाया है, परमेश्वर वो है जिसने तुमको छुड़ाया है तुम्हारी गुलामी में से। तो प्रभु जी ने ये निर्देश दिया, प्रभु जी ने कहा देखो भाई, केवल मैं ही हूं आराधना के योग्य, मैं ही लोगों छुड़ाता हूं, मेरी आराधना करो। जब प्रभु जी ने ऐसा कहा तो निर्गमन उसके 24 अध्याय, निर्गमन उसके 24 अध्याय उसके 3 पद में, निर्गमन 24:3 पद में, मजे की बात है। यहां पर तो व्यवस्था दिए जा रही है, 10 आगे दी गए, तो सारे लोग इसराइलियों सब लोग जमा है पहाड़ के सामने, ठीक है, सब लोग कल्पना करिए, ढेर सारे लाखों लोग खड़े हुए हैं और मूसा जोर से आवाज चला रहा है, बुलंद आवाज में, ठीक है, पहाड़ी है तो आवाज गूंज रही है, तो सबके पास पहुंच जा रही है, उनको माइक की जरूरत नहीं है, ठीक है। 24:3 पद में फिर मूसा ने लोगों पास आकर यहोवा के सब वचन और सब नियम दोहरा दिए। इस पर सब लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, सबने एक साथ क्या कहा? सबने एक साथ क्या कहा? यहोवा के जो वचन है वे हम सब मानेंगे। बहुत तेज का जो प्रभु जी ने कहा, बिल्कुल मैं क्यों नहीं मानेंगे, हम सब मानेंगे, बोलो सब लोग आमेन, सब लोग बोलो आमेन, तो सबने कहा आमेन, सबने कहा आमेन, ठीक है, वहां पे उस समय, ठीक है, हाँ ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसे आमेन का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ हम सहमत हैं, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तो सबने कहा ऐसा ही हो, ठीक है भैया, हम मानेंगे भैया। तुम किसी की उपासना मत कर, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सबत के दिन को प्रभु के दिन माना, बिल्कुल करेंगे, क्यों? क्योंकि सारा सप्ताह तो प्रभु ने बनाया ही है, हमारे लिए दिया, चलो एक दिन तो प्रभु के लिए आराधना करेंगे, हाँ हाँ सब करेंगे, सब करेंगे, हाँ करेंगे। हुआ क्या? मेरे साथ आगे पलट गया 32वें अध्याय में, मुश्किल से कुछ अध्यायों के बाद, अभी ज्यादा समय की बात नहीं है। उसके बाद मूसा ने उनको आज्ञा दी, फिर मूसा ने कहा ऐसा है, रुके रहो, अभी प्रभु जी मुझको कुछ और बातें बता रहे हैं, मैं जा रहा हूं उनसे मिलने के लिए पहाड़ के ऊपर। वो पहाड़ के ऊपर चला गया और नीचे लोग हैं, जब नीचे लोग हैं तो लोग क्या कह रहे हैं 32 अध्याय में, 32 अध्याय के पहले पद में, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत पर से उतरने में विलंब हो रहा है, तो वे हारून के चारों इकट्ठे हुए और उनसे कहने लगे, अब अभी कौन लोग हैं ये लोग, अभी थोड़ी देर क्या कह रहा, हाँ हाँ मानेंगे, सब मानेंगे, जो कहोगे सब मानेंगे, सब मानेंगे, सब मानेंगे, अभी कह रहे पता नहीं कहाँ गए मूसा, कितनी देर हो गई भाई, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 1 हफ्ते हो गए, आए नहीं भाई, पता नहीं कहाँ जाए, ऊपर पहुंचा भी नहीं पहुंचा, प्रभु जी बात कर रहा है, कहीं ऊपर ही तो नहीं चला गया है, वापस आया कि हम लोग इंतजार करते रहेंगे, क्या करेंगे, कब तक करेंगे, ऐसा एक काम करो, एक काम करो, क्या करो, क्या करो, 32 अध्याय के पहले पद में उसके आखिरी लाइन में, अब हमारे लिए एक देवता बनाओ, क्या 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 कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, अब हमारे लिए एक देवता बनाओ जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मनुष्य मूसा को जो हमें मिस्र छुड़ा कर लाया है क्या हो गया है। देख रहे हैं मनुष्य की विडंबना, देख रहे हैं, देख रहे हैं विद्रोह, देख रहे हैं मनुष्य का हृदय कैसा है, कैसा ना, हम तुरंत जो है, हम जो सच्चा परमेश्वर है उसको छोड़ने में हमें समय नहीं लगता है, हम तुरंत क्या करते हैं, सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके फिर अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी ज्ञान से कहते हैं हम बनाएंगे ईश्वर, ईश्वर दिखने में कैसा होगा, वो ऐसा हो, उसकी आंख ऐसी होगी, उसकी नाक ऐसी होगी, उसके हाथ ऐसे होंगे, अगर बलशाली है तो बहुत सारे हाथ होने चाहिए, बहुत बुद्धि है तो बहुत सारे सर होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे अपनी कल्पना के समान, बड़ी जल्दी, बड़ी जल्दी। यहां पर भी यही चीज है ना, और क्या हुआ, दुख की बात क्या है, हारून जो कि मूसा का भाई है और ये सब लोगों ने परमेश्वर के पराक्रमी काम को देखा था, ऐसा नहीं कि लोगों ने देखा था, इन लोगों को मालूम था, इनके इनके बाप दादों ने देखा था, परमेश्वर इनको मिस्र देश से छुड़ा कर लाल समुद्र को उसने बांट दिया था, 2 टुकड़े में कर दिया था, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है भैया, और परमेश्वर ने इनको क्या क्या नहीं किया प्रभु जी के साथ, उसके बाद दिया गया, क्या करें ये लोग, हारून ने कहा हाँ ठीक है सब लोग जाओ अपनी बालियां लेकर के आओ, सोने सामान लेकर के सब मिलाया और सब कुछ ला करके उन्होंने क्या किया, सोने के सामान ला के चौथे पद में उसने हाथ से लिया और सांचे में डालकर एक बछड़ा बनाया और टंकी से गाड़ दिया और फिर कहने लगा हारून के सब क्या चौथे पद में देखे, हे इसराइल तेरा ईश्वर या तुम्हारे देवता जो तुझे मिस्र देश से लेकर वो यही है। विडंबना देख रहे हैं, विचित्र बात है, एक बात ध्यान रखें यहाँ पे, ये जो क्या बनाया उसने, एक बछड़ा, गाय का बछड़ा। उस समय भी प्राचीन निकट पूर्व में मिस्र देश और सीरिया और इराक उस जगह की जो सभ्यताएं थी उस समय, वहां भी मूर्ति पूजा बहुत पाई जाती थी और वहां भी जो कई इसराइल के आसपास के जो लोग थे, मिस्र के लोग थे, कई ईश्वरों की आराधना करते थे, उनमें से एक मुख्य ईश्वर अक्सर गाय हुआ करती थी अक्सर। तो परमेश्वर को छोड़ करके एक बछड़ा बनाया और फिर बछड़े से कह रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी बछड़े की आराधना करें ना, बात समझ रहे, इसराइलियों हमारे आसपास के सब लोग बछड़े की आराधना करें, वही होगा बचा कर लाएगा। अब ईश्वर को तो देखा नहीं हमने, परमेश्वर को देखा नहीं, तो हम क्या करें? ठीक है, यही है हमारा ईश्वर। देख रहे हैं विडम्बना आगे की कहानियों में, क्योंकि अगर हम जाएंगे बहुत समय लग जाएगा। पर परमेश्वर मूसा को नीचे भेजता है, मूसा उनको फटकारता है, डांटता है, दंडित करता है, लेकिन हम फिर पुराना नियम की पूरी कहानी पढ़ते चले जाएंगे। इसराइल अपनी आदत से बाज नहीं आता, बार बार मूर्ति पूजा की ओर फिरता है। ये है मनुष्य की स्थिति, ये है हमारी प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव, हमारा भीतरी स्वभाव। ये हम जान बूझ करके सच्चे परमेश्वर को छोड़, क्योंकि वो ऊपर है ना, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम अदृश्य परमेश्वर को हम दृश्य बनाना चाहते हैं, असीमित परमेश्वर को हम सीमित बनाना चाहते हैं, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर को थोड़े से सामर्थ्य में रखना चाहते हैं। हम अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहते हैं, हम अपने परंपराओं के अनुसार चलना चाहते हैं, हम अपने पूर्वजों की रीति रिवाजों के अनुसार चलना चाहते हैं। हमारे बाप दादों ने यह कहा था कि भगवान जी ऐसे होते हैं, तो ठीक है कर लो। लेकिन ये भूल गए इसराइली लोग कि परमेश्वर इस बात से घृणित होता है, परमेश्वर क्रोधित होता है, परमेश्वर को नहीं भाता। मेरे साथ एक खंड निकाली इसके बाद हम तो इसराइल की कहानी चलते, बार बार वो लोग विद्रोह कर रहे हैं परमेश्वर का, बार बार मूर्ति पूजा में जा रहे हैं, परमेश्वर अलग अलग तरह से उनको दंडित करता है। एक मुख्य समस्या उनके साथ है कि वे लोग परमेश्वर को छोड़ करके हाथ के बनाए ईश्वरों की ओर मुड़ते हैं। यशायाह उसका 44 अध्याय, यहां पे परमेश्वर हम अपने भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा बताता है कि मूर्ति पूजा की व्यर्थता क्या है, मूर्ति पूजा की क्या है मूर्खता, व्यर्थता क्या, फायदा क्या, कोई फायदा नहीं। और फिर वहां पे बताता कि किस तरह से मनुष्य बार बार सच्चे परमेश्वर को त्याग करके हाथ के बनाए कल्पना के, विचित्र बात है कि नहीं, आप एक क्षण के लिए सोचिए, कौन निकाल के लाया था उनको मिस्र देश से, कौन लेकर के आया? प्रश्न पूछ रहा हूं, फिर से पूछता है, ये प्रश्न है मेरा, कृपया करके मुझे उत्तर दीजिए, कौन इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल के लेकर के आया था? यहोवा परमेश्वर, यहोवा लेकर के आया था। और उन्होंने फिर हाथ से क्या बनाया, किसके हाथ से बनाया, उन्होंने क्या दिया? अपनी बालियां, सोने की जब भी हम मांगे बालियां मांगेंगे देंगे आप लोग, नहीं भाग जाएंगे, नहीं वो कहे लो और क्या चाहिए, बक्से में रखा, वो ला करके भैया बछड़ा बनाने के लिए क्या किया, सब लो मेरे जेवरात, ये लो घर में भी रखा है, बिटिया लाओ अपना भी निकालो, हाथ के निकालो, पैर के निकालो, सर के निकालो, जो सब दे दो। और फिर उसके सामने गिर के कहे तुम ही हमको निकाल के लेकर के आयो। देख रहे हैं अंधापन, देख रहे हैं विचित्रता है कि नहीं, विचित्र बात है कि नहीं, अजीब बात, ये बछड़ा निकाल के लेकर गया। अब उसको समझाने के लिए आप जो करें, ये बछड़ा प्रतिनिधित्व कर रहा है उस ईश्वर का, कैसे ये बछड़ा कैसे उस ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकता है? यशायाह 44:6 से आगे परमेश्वर यहोवा बताता है कौन है वो। वो कहता है इसराइल, यहोवा जो इसराइल का राजा है उसका छुड़ाने वाला है, प्रभु यहोवा बार बार मैं छुड़ाने वाला, मैंने छुड़ाया तुमको, मैं तुमको अलग अलग राजाओं से मैंने तुमको छुड़ाया, सबसे पहले मिस्र देश से छुड़ाया, तुमको पापों से छुड़ाया, हाँ मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं, मुझे छोड़ कोई अन्य ईश्वर नहीं, खत्म बात खत्म, यहोवा मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं, मैं अल्फा हूं, ओमेगा हूं, मैं शुरुआत हूं, मैं अंत नहीं होगा ना शुरुआत, कहने का तरीका है, मैं ही हमेशा, मैं सर्वे सर्व, मैं सब कुछ हूं, मुझे छोड़ कोई और नहीं। सात पद कौन है मेरे समान, कौन है मेरे समान, कोई है? कोई नहीं है, ठीक है। फिर नौ पद से आगे, यहोवा परमेश्वर यशाया के द्वारा इसराइलियों से कह रहे हैं, जो गढ़कर मूर्ति बनाते हैं वे सबके सब निरर्थक हैं। नवे पद में जो गढ़कर मूर्ति बनाते हैं वे सबके सब निरर्थक हैं, उनकी पूज्य वस्तुएं कुछ लाभ की नहीं, यहां तक कि जो उनके पक्षधर हैं वे भी ना तो कुछ देखते हैं ना कुछ जानते हैं, इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता को बनाकर यह मूर्ति ढालकर व्यर्थकार किया है? देख उसके सब साथियों को लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि शिल्पी जो बनाते हैं मूर्तियां निरे मनुष्य तो हैं, वे सब इकट्ठे हों, वे खड़े हों, वे थरथराएं, वे लज्जित हों। एक मनुष्य, फिर यहां पे 12 पद से आगे वो बताना शुरू करता है कैसे होता है, मूर्ति कैसे बनाई जाती है। एक मनुष्य अंगारों पर काटने वाला हथियार बनाता है और हथौड़ों से गढ़ता है, वो अपनी बलवान भुजाओं से काम करता है, वो भूखा भी हो जाता है, उसका बल घट भी जाता है, वो पानी नहीं पीता, थककर चूर हो जाता है। दूसरा मनुष्य लकड़ी की मूर्ति बनाता है, वो सूत से उस पर लाल रंग चिन्ह लगाता है, उस पर रंध चलाता है, प्रकार से रेखाएं खींचकर उसे मनुष्य का स्वरूप देता है और उसे मनुष्य की सुंदरता प्रदान करता है जिससे कि वो घर में स्थापित की जा सके। हाँ, वो अपने लिए देवदार काटता है वन के वृक्षों में से, अपने लिए सनोवर या बांझ का एक वृक्ष चुनकर उसकी देखभाल करता है, वो चीड़ का पौधा उगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है, तब मनुष्य के लिए ईंधन के काम में आता है, उसमें से कुछ सुलगा कर आग तापता है और उसको जलाकर रोटी पकाता है, फिर कुछ से वो देवता भी बनाकर उसकी उपासना करता है, वो उससे गढ़कर मूर्ति बनाता है, उसी की उपासना दंडवत करता है, उसका आधा भाग तो वो आग में जलाता तथा उसी भाग से मांस भूनकर खाता और तृप्त रहता है, फिर आग जला कहता आहा गर्मी मिली, मैंने आग देखी। शेष भाग से वो एक मूर्ति देव, वो एक देवता अर्थात एक खुदी ही मूर्ति बनाता है, वो उसको दंडवत करके उसकी उपासना करता है, वो उससे विनती करके कहता है मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा ईश्वर है। विडंबना देख रहे, एक ही उसी ने अपने हाथ से बनाई है लकड़ी, थोड़ा उसने आग जलाया और फिर थोड़े से उसने मूर्ति बनाई और फिर उसी के सामने एक झुक कर कह रहा है तू मेरा ईश्वर है। 18 पद से बड़ी भयंकर बात, वे ना तो जानते ना कुछ समझते क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद कर दी। हम जब रोमियो में आएंगे तो हम बार बार ही देखेंगे परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद कर, जिससे वे ना देख सके, उनके मन को भी ऐसे कर वे ना समझ सकें, कोई इस पर ध्यान नहीं देता, ना इनका ज्ञान और समझ इतना कि वे कह सकें उसका एक भाग तो मैंने जला दिया, उसके अंगारों पे रोटी पकाई, मैंने मांस भूनकर खाया है, तब क्या मैं उसके आधे बचे हुए लकड़ी से वस्तु बनाऊं, क्या मैं लकड़ी की टुकड़े को दंडवत करूं? परमेश्वर का वचन बिना किसी मिलावट के हमको बताता है क्या समस्या है मूर्ति पूजा के साथ। तो ये तो हो गई है बाइबल की साफ साफ शिक्षा, क्यों गढ़ी हुई मूर्तियां बनाना गलत है, खराब है, उसके सामने हम क्यों नहीं झुक सकते, क्यों नहीं झुक सकते? तो उनकी आराधना करना किसी भी तरह से, इसीलिए उनके ऊपर चढ़ाई गई उपासना की गई चीजों को, वस्तुओं को हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि जब लोग उस पर प्रसाद चढ़ाते हैं या कुछ चढ़ाते फिर उसके बाद हमको देते हैं तो हमसे क्या कह रहे हैं कि ये ईश्वर है, तो हमको बड़े सज्जनता के साथ, बड़े नम्रता के साथ, बड़े प्रेम के साथ कहना पड़ेगा नहीं भैया, हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जिसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए उसके सामने चढ़ाया गया, इसलिए मूर्ति के सामने चढ़ाया गया वस्तु हम नहीं खाते। चक्कर यह है, तो जब बात होगी तो आप लोग कहेंगे हमारे यहाँ मूर्तियां नहीं है, लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं, कई बार हो सकता है मूर्तियां नहीं तो फिर अपने घरों में क्या करेंगे, यीशु मसीह का चित्र लगा लेंगे, यीशु मसीह के चित्र लगा लेंगे, अपने कार में लगा लेंगे, अपने घर में लगा लेंगे और सोचेंगे कि उसमें कुछ विशेष ताकत है। हम नहीं जानते यीशु मसीह दिखने में कैसे थे, हमको नहीं मालूम यीशु मसीह दिखने कैसे थे, ये मूर्खता है। यीशु मसीह का चित्र बना करके उसकी उनकी आराधना करना मूर्खता है, बाइबल में यीशु मसीह का चित्र भी बनाना सही नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं तो बाइबल तो हम आपके सामने एक भेद लाना चाहते हैं, फर्क लाना चाहते हैं बाहरी मूर्तियों का और भीतरी मूर्तियों का। जो बाहरी जो मूर्तियां हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी आंखों के सामने हम उनको अनुभव कर सकते हैं, जो मूर्तियां हैं, जो बाहरी जो मूर्तियां हैं, जो पत्थर की हैं, जो लकड़ी की हैं, जो सोने की हैं, जो लोहे की जो मूर्तियां हैं जिनको हम छू सकते हैं, ये तो एक क्या बोलेंगे, एक प्रगटीकरण है मनुष्य के भीतरी मूर्तियों का। ठीक है, मेरी बात को फिर से ध्यान समझिएगा, जो बाहरी मूर्तियां हैं वो प्रगटीकरण है मनुष्य के भीतरी मूर्तियों का। तो बाहर की तो मूर्तियां देखना आसान है कि अच्छा ये मूर्ति है, इसके सामने हम सर नहीं झुकाएंगे, इसके हम आराधना नहीं करेंगे, वो तो आसान है मना करना। लेकिन हम और आप मसीहों के लिए एक और खतरनाक बात है कि हम और आपके हृदय में भीतर मूर्तियां पाई जाती हैं। तो अगर कहने का क्या मतलब है कि उस समय आरंभ से ही जब चित्रों की बात की जा रही है तो शुरुआत पहली बार यीशु मसीह कोई चित्र नहीं हमारे पास, ये बाद में हम जो पाते जो यीशु मसीह के चित्र हैं वो बाद की बातें हैं। जब आरंभ में लोग कर रहे हैं तो लोग आरंभ से मजाक उड़ाए लोगों ने मसीहों का, इनका भगवान कैसा है, इनका ईश्वर कैसा है, वो गधे के समान है, वो तो क्रूस के ऊपर चढ़ गया था, जो क्रूज के ऊपर चढ़ा हुआ लटका हुआ गधा नहीं उसके समान है। इस तरह से लोग मजाक उड़ाते हैं, कौन है उनका ईश्वर। इस तरह से अलेक्सिमोस अपने ईश्वर की आराधना कर रहा है। तो चित्रों के पीछे हम नहीं पढ़ेंगे, मसीह में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम कहना क्या, हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब हम चित्रों की बात करते हैं, जब हम मूर्तियों की बात करते हैं, खाली शारीरिक नहीं है लेकिन आत्मिक है। कुछ पदों को जल्दी से मैं देख लीजिए। कुलुसियों उसका तीसरा अध्याय, इफिसियों उसका पांचवा अध्याय, पहले इफिसियों उसका पांचवा अध्याय उसका पांच पद। पुराने नियम में अनाज्ञाकारिकता मूर्ति पूजा है, जब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिकता कर रहे हैं। दूसरे राजाओं के ऊपर जब लोग भरोसा कर रहे हैं तो वो भी मूर्ति पूजा के समान है। जब प्रभु को छोड़ करके प्रभु की बातों को नहीं मान रहे वो मूर्ति पूजा के समान है। ठीक है, तो ये पत्थर की मूर्ति माननी हो रही है, केवल विचारों की बात हो रही है, आंतरिक आंतरिक शारीरिक नहीं, भौतिक शारीरिक नहीं, लेकिन भीतरी मूर्तियों की बात हो रही है। और अपने पे भरोसा करना भी मूर्ति पूजा है। लेकिन इफिसियों और कुलुसियों, इफिसियों का पांचवा अध्याय उसका पांचवा पद हमको बताता है, क्योंकि तुम ये निश्चय पूर्वक जानते हो कोई व्यभिचारी अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य अर्थात मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज का उत्तराधिकारी नहीं होगा। लोभी व्यक्ति, लोभी लालची, लालची, यही बात कुलुसियों के तीसरे अध्याय उसके पांचवें पद में भी कही जा रही है। यही बात तो है। क्या मूर्तियां क्या है? तो हमने पहले 30 मिनट बहुत व्यतीत किया आपको बताने के लिए हाथ की बनाई मूर्तियां, ठीक है। लेकिन हाथ की बनाई मूर्तियां प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे दिल के अंदर की मूर्तियों की, हमारे हृदय के अंदर पाए जाने मूर्तियां। कई बार सुन चुके हैं, प्रभु के महान सेवक थे, उन्होंने 2500 साल पहले कहा कि मनुष्य का जो हृदय है वो मूर्तियों का कारखाना है। मनुष्य का हृदय मूर्तियों का कारखाना है, वो मूर्तियां, हम निरंतर मूर्तियां बनाते रहते हैं, आंतरिक आत्मिक मूर्तियां। तो क्या है मूर्तियां, मूर्तियां क्या है? सिर्फ हाथ की नहीं, सिर्फ पत्थर की नहीं, सिर्फ लोहे की नहीं। इससे पहले कि आप बोलें, मैं बार बार फिर बोलूं, लेकिन मूर्ति वो चीज है जो सच्चे परमेश्वर का स्थान हटाते हैं। सीधी सीधी बात समझे नहीं समझे? जो सच्चे परमेश्वर का स्थान हटाते हैं वो मूर्तियां। तो मेरे साथ एक पद देख लीजिए, रोमियों का पहला अध्याय, रोमियों का पहला अध्याय, रोमियों का पहला अध्याय उसका 21 पद से लेकर 23 पद तक। इस मूर्ति पूजा में समस्या क्या है, इस मूर्ति पूजा में दिक्कत क्या है, क्या बुराई क्या है इस मूर्ति पूजा में? जब हम परमेश्वर को हटा करके किसी और को रख देते हैं उसमें क्या बुराई है? उसमें चाहे पत्थर की हो चाहे हमारे मन के अंदर हो, समस्या यह है। रोमियों का पहला अध्याय उसके 21 पद, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे फिर भी उन्होंने ना तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और ना धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे। उनका निर्बुद्धि मन अंधकार में हो गया, बुद्धिमान होने का दावा करते हुए मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी मन परमेश्वर की महिमा को नश्वर मनुष्य पक्षियों चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल दिया। मूर्ति पूजा के साथ बुराई क्या है, खराबी क्या है, समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मूर्ति पूजा जो अविनाशी परमेश्वर है, जो महान परमेश्वर है, जो असीमित परमेश्वर है, जिसके जैसा कोई नहीं है, उसके बदले में हम किसी और की आराधना करने लगते हैं। हमें धन्यवाद और सम्मान उसको देना चाहिए, लेकिन हम किसी और चीज को धन्यवाद और सम्मान देने लगते हैं। अब आप सोचते हैं अपने जीवन के बारे में, ठीक है, आप ये मत कहिएगा भैया मेरे घर में मूर्तियां नहीं है। अब आप सोचिए आपके जीवन में आप सबसे अधिक सम्मान किसको देते हैं? अपने जीवन में सबसे अधिक जब भी कोई भला होता है आपके साथ तुरंत धन्यवाद आप किसको देते हैं? किसकी वजह? मेरे माता पिता की वजह से हुआ, ये सारी खुशी मेरे बच्चों की वजह से। तो क्या है मूर्तियां, क्या है मूर्तियां? एकमात्र जीवित परमेश्वर के स्थान पर आ जाते हैं। वे इन लोगों ने क्या किया, उसको धन्यवाद नहीं दिया, उसका आदर नहीं, प्रभु को धन्यवाद देने के बजाय, प्रभु का आदर करने वाले, प्रभु के लिए जीने के बजाय वे इन वस्तुओं के लिए जीने लगे। समस्या क्या है? समस्या यह है कि यह सारी चीजें, चाहे हाथ की बनाई मूर्तियां हो चाहे हृदय के अंदर की मूर्तियां हो, जिनको हम देख नहीं सकते, अदृश्य मूर्तियां, अदृश्य हमारी भावनाएं हमारी इच्छाएं, वे सब जो है परमेश्वर की महिमा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। जो परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है उसको जो महिमा मिलनी चाहिए, उसकी आराधना होनी चाहिए। तो ये हमारे मन के अंदर की मूर्तियां भी कहती हैं, नहीं नहीं हम उसकी आराधना नहीं करेंगे, हम इस चीज की आराधना करेंगे। जो भी चीज है, अब उस फिल इन द ब्लैंक, खाली रिक्त स्थान भरो। अब आप रिक्त स्थान में आप कुछ भी भरते चले गए, रिक्त स्थान में कुछ भी भरते चले, ठीक है, हम आपको समझाते जाएंगे। परमेश्वर की जो महिमा है उसको चुराते हैं वे सब, सब कुछ, वे सब बातें जो परमेश्वर जिसके योग्य है, जो परमेश्वर को मिलना चाहिए, उसके बदले ये चीजें हमसे छीनने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर किस चीज के योग्य है? परमेश्वर संपूर्ण महिमा के योग्य है, परमेश्वर संपूर्ण आराधना के योग्य है, परमेश्वर संपूर्ण धन्यवाद के योग्य है, और उसके बदले ये सारी चीजें आने लगती है हमारे जीवन में। तो वो क्या करती हैं? क्या करती हैं? हमारे स्नेह, हमारे हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा स्नेह सबसे ज्यादा किसके लिए होना चाहिए? सबसे ज्यादा किसके प्रति होना चाहिए? हमारा दिल के भीतर जो भावनाएं हैं, जब हम भावुक हों, सबसे अधिक हमें किसके बारे में भावुक होना चाहिए? कौन सी चीजें, कौन सी बात जो हमारे मन की अंदर की गहराई की भावना को कुरेद के रख देती है, उभार के रख देती है? परमेश्वर। अब खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरो। हम लोग स्कूल में आते ना, स्कूल में बताते ना, खाली स्थान भरो। अब आप भर जाइए, कौन सी चीज हमारी भावनाओं को उभार के रखती है? मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, या वो लड़का या वो लड़की, या मेरी पत्नी, या कुछ भी हो सकता, कुछ भी हमको नहीं मालूम, आपको मालूम है। आप अपने बारे में पूछिए, दूसरे बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। तो हम हाथ की बनाई हुई, अब मूर्ति की बात नहीं कर रहे हम, लकड़ी, जब बाइबल मूर्ति की बात करती है तो सिर्फ लोहे पत्थर और ईंटे की मूर्ति की बात नहीं कर रही, हम बता चुके हैं आपको बार बार, ठीक है? उसका उपयोग करते हैं हमें दर्शाने के लिए कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी जन, कोई भी घटना, कोई भी कार्य, कोई भी भावना, कोई भी ताकत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर का स्थान ले, जो आदर, जो महिमा, जो धन्यवाद परमेश्वर को मिलना चाहिए वो सिर्फ उसी को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। अगर उसके बदले किसी और को मिल रहा है तो हम परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं और वो मूर्ति पूजा है। और परमेश्वर ने साफ सका तुम ऐसा नहीं कर सकते। वे हमारे भावनाओं को लेते, छीनते हैं, आकर्षित करते हैं, हमारे अफेक्शंस को, वे हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हमारे अटेंशन को, हमारे ध्यान को। तो हमारा ध्यान, जब आप रात में सोते हैं, सपने आपको किसी चीज में आते हैं? किस चीज में आते हैं सपने आपको? जब आप सुबह उठते, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलता है? किस चीज में सोते हैं आप? रात में सोने से पहले किस चीज में सोच रहे होते हैं आप? जब अपने आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बहुत बात करते हैं? और कई बार जब अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, बात करते करते दिमाग में क्या चल रहा है पीछे? किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी चीज आपकी अटेंशन को, आपके ध्यान को पकड़े हुए है? वो मूर्ति है? आपकी नौकरी, आपकी तनख्वाह, आपकी खेती, आपके बहू, आपके बच्चे, आपके, हमें नहीं मालूम, हम, आप जानते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, कौन सी चीज है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं? मेरी शादी, मेरे पढ़ाई, मेरी सुरक्षा, मेरे बैंक में पैसा, जो चीज आपके ध्यान को हमेशा, आपकी आंखें उसी तरफ लगी हुई हैं, वो मूर्ति है। और आप उसकी आराधना कर रहे हैं क्योंकि आपका प्रेम उसके लिए लगा हुआ, प्रभु जी उससे घृणा करते हैं, हम उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, वे हमारे समर्पण को मांगते हैं, वे हमारे प्रेम को मांगते हैं, हमारे ध्यान को मांगते हैं, हमारे अलीजेंस, हमारे समर्पण को मांगते हैं। और ये चीजें मूर्तियां क्या कहती हैं? हमारे भय को बढ़ा के रखते हैं, तो हमको डरा कर रखते हैं, अरे ये छूट जाएगा तो क्या होगा, अगर हमको ये नहीं मिलेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम इन चीजों से डरते हैं, अगर ये नहीं मिलेगा तो हम लुट जाएंगे, अगर ये चला गया तो हम कैसे जिएंगे। कौन सी चीज? अगर मेरे बच्चे चले जाएंगे, अगर हमारे माता पिता चले जाएंगे, अगर हमारी पत्नी चली जाएगी, अगर हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा हमारे समाज में इज्जत चली जाएगी, तो क्या हम लुट जाएंगे? क्या हम बर्बाद हो जाएंगे? जिस चीज से हम अत्यधिक डरते हैं, हम क्या करते हैं, इन चीजों के ऊपर अपनी आशा लगा के रखते हैं, इन पे हम भरोसा करते हैं, ये हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। कौन सी चीज आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे? अगर हम अपने बच्चे को सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे, 10,000 रुपए कमाएंगे लेकिन 9,000 रुपए हम फीस में भरेंगे, चाहे हम भीख मांगे, चाहे हम कर्जा लें, लेकिन हम पढ़ाएंगे अपने बच्चे को सबसे महंगे स्कूल में, चाहे जो हो जाए। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख लेगा तो फिर वही तो नौकरी करके हमको खिलाएगा ना। हमारी सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा किसमें? किसमें हमारी सुरक्षा? किस चीज में? किस चीज में? कौन देगा हमको सुरक्षा? तो जिस चीज में हम सोच रहे कि ये हमको अंत में सुरक्षा देगी, अगर मेरी शादी सही हो गई, अगर इस व्यक्ति से हमारा संबंध सही हो गया, इस समाज में अगर हम बैठे रहेंगे, वहां पे अगर हमारी नौकरी लग जाएगी, इस नेता से हमारी दोस्ती हो जाएगी, तो जिस चीज पे हम भरोसा रख रहे हैं सुरक्षा के लिए, ये चीज हमारे लिए एक मूर्ति है। क्योंकि आखिर में सुरक्षा देने वाला कौन है? कौन है सुरक्षा देने वाला? प्रभु जी हैं। किस पे हम भरोसा करेंगे आखिर में? लोगों के ऊपर? किस पे हम आशा रखेंगे? किस पे हम आशा? किस चीज पे आशा है आपकी?
जब 60 साल के हो जाएंगे, अगर बस ये हो जाए भैया, बस कुशल से जीवन कट जाएगा हमारा। सही में सही मजाक कर रहे हो आप? ये चीज जिस चीज पे आप भरोसा कर रहे हो झट से चला जाएगा। तो कौन सी चीजें जो आपको जीवन में आशा देती हैं, कौन सी चीजें जो आपको जीवन में उद्देश्य प्रदान करती हैं, कौन सा जीने का उद्देश्य है? हम इसी के लिए जी रहे हैं, अब बस इसी के लिए जीना है। आप में से कई लोग हमसे बोलते हैं बस अब क्या, अब हमारा जीवन कट गया, बच्चों के लिए जीना है। सच में आप जब बोलते हैं तो आपको रुकना चाहिए उसी समय, प्रभु जी माफ करिए मुझे ऐसा नहीं बोला, सिर्फ बच्चों के लिए जीना है आपको। ये जीवन बच्चों ने आपको दिया है, ये जीवन प्रभु ने आपको दिया है। हमारे समाज में बच्चे हमारी बहुत बड़ी मूर्ति है। हमारे पास 4 बच्चे हैं भैया, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ये मत सोचिए, बच्चे बहुत प्रिय हैं हमको, इसीलिए हमारे पास 4 हैं। ठीक है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चे हैं। ठीक है, जब लोग बच्चे नहीं करना चाहते ऐसे समाज में हमारे पास 4 बच्चे हैं, बच्चों से बहुत पसंद। लेकिन बच्चों के लिए हम नहीं जिएंगे भाई, बच्चे हमको अर्थ थोड़ी ना प्रदान करेंगे। बच्चे हमारा अस्तित्व है, या हमारे माता पिता हमारे अस्तित्व है, या हमारा आस पड़ोस के लोग, कौन है हमको अर्थ देगा? किसके लिए हम जिएंगे? किसने बनाया है हमको? किसने बनाया हमको? मूर्ति पूजा परमेश्वर का अनादर करती है जब हम ये सारी चीजें करते हैं। तो आप सोचते जाइए कैसे आप प्रभु का अनादर कर रहे हैं। अगर ये चीज हो जाए भैया तो कल्याण हो जाएगा। अगर प्रभु जी आपके पास है तो आपका कल्याण हो गया। अगर प्रभु जी आपके पास है तो आपको मुक्ति मिल गई। अगर प्रभु जी आपके पास है तो आपका जीवन सफल हो गया। अगर प्रभु जी आपके साथ हैं तो सब बढ़िया हो गया। मुश्किलें आएंगी, कठिनाई आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, कमी होगी, तंगी होगी, भूखे रहेंगे, हो सकता है गरीबी में रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास वो संतुष्टि है, उसके बाद भी हमारे पास वो आशा है, वो भरोसा है जो ये मूर्तियां नहीं दे सकती हैं। क्यों क्यों मत भरोसा करिए इनके ऊपर? क्योंकि जो मूर्तियां हैं ये अस्थाई है, टेम्पररी, पासिंग, आज है कल चली जाएंगी। तो किसी की बात कर ले, क्या बच्चे आपके साथ हमेशा रहेंगे? क्या बच्चे आपके साथ, क्या आपके माता पिता आपके साथ हमेशा रहेंगे? क्या आपके पड़ोसी आपके साथ हमेशा देंगे? क्या आपका अच्छा शरीर, जो सुंदर सा चेहरा आपके पास है जिसपे आपको बहुत गर्व है, या आपके वो आपके साथ पास हमेशा रहेगी? क्या आपकी बुद्धि आपके साथ हमेशा रहेगी? क्या आपका बल आपके साथ हमेशा रहेगा? क्या आपका देश आपके साथ हमेशा रहेगा? क्या कौन सी पार्टी आपके साथ हमेशा रहेगी? किसी का भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हमको यह मालूम है एक दिन जब हमारी आंख बंद हो जाएंगी तो कोई भी हमारे साथ नहीं होगा। कौन रहेगा आपके साथ उस समय? ये तो होना ही है कि नहीं होना है, ये नियति है कि नहीं है। हम आपको एक बात के लिए उत्साहित करेंगे, हर 3-4 महीने में कृपया करके KGMC के ट्रॉमा सेंटर में चले जाया करिए, इमरजेंसी में, हर 3-4 महीने में, अपने आप को याद दिलाने के लिए कि जीवन कितना क्षण भंगुर है। अपने आप को याद दिलाने के लिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए। जब वहां पे आप देखेंगे लोगों की हालत, कैसे लोग स्ट्रेचर पे आते हैं, कैसे लोग स्ट्रेचर पे ले लिए जाते हैं, जिंदा अधमरे मरे हुए, तब आपको समझ में आएगा, हमको याद आएगा कि ये हमारी सच्चाई है। हर 3 महीने से 6 महीने के बीच में हमको कब्रिस्तान जाना चाहिए, हमें किसी न किसी की मिट्टी को देखना चाहिए। हमारी असलियत ये है, कोई नहीं साथ देगा आपका, कोई नहीं साथ देगा। ये मूर्तियां आपको निराश करेंगी, ये मूर्तियां वादा करेंगी कि मैं तुमको सुरक्षा प्रदान करूंगी, लेकिन वो मूर्तियां नहीं दे पाएंगी आपको सुरक्षा। आपके बच्चे कहेंगे मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगे, लेकिन नहीं रहेंगे आपके साथ। आपका समाज कहेगा कि मैं तुमको इज्जत दूंगा, लेकिन वो नहीं देने पाएंगे इज्जत। आपको खुशी का वायदा करेंगे, आपको अलग अलग चीजों का वायदा करेंगे, लेकिन इनके वायदे धोखे हैं। ये आपको चेक देंगे बार बार 2 करोड़ के 5 करोड़ के, लेकिन जितनी बार आप बैंक में जाएंगे उतनी बार बाउंस होकर के वापस आपके ऊपर हंसेंगे बैंक के लोग, कहेंगे ये कहां से ले आए दोबारा, फर्जी चेक है ये, फर्जी चेक है, कुछ नहीं होगा। ये नहीं देने पाएंगे आपको, जिस चीज का वादा करते हैं वो नहीं। ये संसार आपको वायदा करेगा अलग अलग चीजों का, लेकिन ये नहीं देगा आपको खुशी, ये नहीं देगा संतुष्टि, आपको खोखला छोड़ देगा और अंदर ही अंदर से कीड़े खा करके आप खोखले रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हवा पकड़ने के समान है, पकड़ा कभी आपने? हाँ, मूर्ति पूजा हवा पकड़ने के समान है।
वो आपसे कहेगी मैं तुमको खुशी दूंगी, वो कहेगी मैं तुमको जीने का मकसद दूंगी, वो कहेगी मैं तुमको सुरक्षा दूंगी, वो कहेगी मैं तुमको प्रेम दूंगी, वो कहेगा मैं तुमको भरोसा दिलाऊंगी, मैं तुम्हारे भय को छुटकारा दूंगी। लेकिन वो सब केवल प्रभु जी कर सकते हैं, सिर्फ प्रभु जी कर। यीशु मसीह इसीलिए संसार में लगभग 2000 साल पहले आए थे। क्यों आए थे यीशु मसीह संसार में 2000 साल पहले? ताकि हमको असली सुरक्षा प्रदान कर सके, ताकि हमको जीने का मकसद दे सके, ताकि हमको हमारा जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो सके, ताकि हमको हर एक भय से छुड़ा सके। हमारे बदले में इसीलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि अब हमारे पास आशा है। जिस तरह से यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, वह सब लोग जो उस पर भरोसा करेंगे अनंत काल तक जीवित रहेंगे। ये दुनिया चली जाएगी, लेकिन जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वे बने रहेंगे। लेकिन जो लोग मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं उनका क्या होगा? पहला क्रंथी उसको छटा दिया, उसका 9 पद से लेकर 10 पद, क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी नहीं होंगे? धोखा ना खाओ, ना वे विचारी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्री गमन, ना कामतुर, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना फियक्कड़, न गालियां बकने वाले और न लुटेरे परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी होंगे। प्रकाशवाद उसका 21:8, परंतु डरपोक, अविश्वासी, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का बाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य उसका 22:22, उसका 14:15। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी होंगे, फाटकों से नगर में प्रवेश करेंगे। 15 पर कुत्ते, हत्यारे, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक और सब जो झूठ को चाहते हैं और उस पर आचरण करते हैं बाहर रहेंगे, बाहर रहेंगे। मूर्ति पूजा जो करते हैं खाली हाथ की बनाई हुई मूर्ति बांधने और यहां पर, लेकिन इस दुनिया की चीजों पर भरोसा करने वाले लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। तो क्या करें हम और आप? क्या आशा है हमारे आपके पास? पहला क्रंथी उसका 6 उसका 11 और तुम में से कुछ ऐसे ही थे। क्या थे? हम व्यभिचारी थे, हम मूर्ति पूजक थे, परस्त्री गमन, कामत्व, पुरुषकामी, चोर, लोभी, पियकड़, गालियां बकने वाले, लुटेरे थे। हम परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी नहीं थे, हम नहीं प्रवेश कर सकते थे परमेश्वर के राज में। लेकिन अब तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए हो, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए हो। यीशु मसीह के क्रूस पे मारे जाने के कारण, उनके लहू बहाए जाने के कारण हम और आप जो मूर्ति पूजक हैं, हम और आप अभी भी जो अपनी दिल की मूर्तियों से नहीं छुड़ा पाते अपने आप को, हम अभी भी जो फंसे रहते हैं चाहते हुए ना चाहते, जाने में अनजाने में, लेकिन हमारे पास आशा है। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे बदले में ये जो काम किया है उसके लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के काम के द्वारा उसने हमको नया बनाया, उसने हमको धो दिया। इसराइली लोग मूर्ति पूजा से बाज नहीं आए, वो नहीं रोक पाए अपने आप को, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने हमारे पत्थर के हृदय निकाल करके मांस का हृदय दिया। अब हमारे अंदर क्षमता है ना बोलने की, अब हम पाप पे विजय पा सकते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। क्या आपने अनुभव किया उसको? क्या आप पाप पे विजय पा पा रहे? क्या आप मूर्ति पूजा को ना बोल पा रहे? अगर आप नहीं बोल पा रहे तो आज का समय पश्चाताप करिए, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करिए, उसका लहू सामर्थ्य है, वो आपको धोएगा, वो आपको क्षमता देगा मूर्ति पूजा पे विजय पाने के लिए, और आप उसके राज के हिस्सा होंगे, संभागी होंगे। मेरी आपसे विनती है, वापस मत जाइए यहां से बिना क्षमा पाए हुए, बिना पश्चाताप करिए, कृपया करके पश्चाताप करिए। यह मत कहिए कि मैं बचपन से ईसाई हूं, चर्च जाता हूं, यह मत कहिए कि मुझे मालूम क्या करना है। अपने धर्म के काम पे भरोसा मत करिए, अपने अच्छे काम पे भरोसा मत करिए, यीशु मसीह के पास आइए और यीशु मसीह कहिए, प्रभु जी मुझ पर दया करिए, मुझ पर दया करिए, मुझ पर कृपा करिए, मैं मूर्ति पूजक हूं, प्रभु जी मैं झूठा हूं, मैं लुटेरा हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मुझ पर दया करिए, मेरे पापों को क्षमा करिए, और यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करने में सामर्थ्य है। कोई ये ना कहे हमने पाप नहीं किया, यदि हम कहते तो हम झूठा अपने आप को धोखा देते हैं, मत धोखा दीजिए। लेकिन उस वो परमेश्वर हमको हमारे सारे पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अपने पापों से पश्चाताप करिए, सच्चा अर्थ पाइए, सच्चा उद्देश्य पाइए, सच्चा प्रेम, सच्चा भरोसा, सच्ची आशा, सच्ची सुरक्षा यीशु मसीह में ही है, और हम धीरे धीरे उसके जैसे बदलते जाएंगे, उसकी समानता में। कुरिन्थ में क्या लिखा है, दूसरे कुरिन्थ 5:17 पद में, हम एक नई सृष्टि है। देखो हम नई सृष्टि, सृष्टि में परमेश्वर ने हमको अपनी समानता बनाया है, पाप की वजह से समानता बिगड़ गई, लेकिन जब नई सृष्टि बनाए तो पुनः हम उसकी समानता में है, हम उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, हम उसके लिए इस संसार में उसकी मूर्ति बन करके लोग सामने हम दिखा सकते हैं आखिर हम हैं कौन, हम परमेश्वर के लोग हैं। और जब लोग हमको देखते हैं तो लोग जान सकते हैं जीवित परमेश्वर कैसा है। धीरे धीरे दूसरे को जैसे 4:18 पद में, हम धीरे धीरे इस जीवन में अंश अंश करके उसकी समानता बनते चला है, और एक दिन जब हम वहां पे होंगे तो हम उसके जैसे होंगे। हम परमेश्वर नहीं बन जाएंगे, हम परमेश्वर कभी नहीं बनेंगे, हम हमेशा मनुष्य रहेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के जैसे पवित्रता में, शुद्धता में, धार्मिकता में, उसका प्रतिनिधित्व संपूर्णता से, पूरी तरह से नए अदन में, नए यरूशलेम में करने पाएंगे। वो हमको नया बनाएगा, हम उसका प्रतिनिधित्व सही तरीके से करने पाएंगे। क्यों नहीं आप उसके पीछे चलेंगे, क्यों नहीं आप उसकी आराधना करेंगे, क्यों नहीं आप सच्चे ईश्वर की आराधना करेंगे बजाय कि हाथ की और अपने मनों के अंदर की मूर्तियों की। आइए हम प्रार्थना करें।